अध्याय 5 जलवायु। भारत की जलवायु का विस्तृत अध्ययन करना एक कठिन विषय है। इस देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो तापीय कटिबंध की दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध का भाग है, तथा इसी प्रकार कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध का भाग है। उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर की उपस्थिति ने देश की जलवायु पर काफी गहरा प्रभाव डाला है। देश की विशालता व उसकी स्थिति ने देश में जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर दी हैं। विभिन्नताएं इतना अधिक महत्व रखते हुए भी दिखाई देती हैं कि कई विदेशी विद्वानों ने भारत को अनेक जलवायु वाला देश बताया है। जितने प्रकार की जलवायु संसार के सबसे बड़े देश सोवियत रूस में भी नहीं पाई जाती हैं, इससे कहीं अधिक प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती हैं। ब्लैनफोर्ड विद्वान ने इन विभिन्नताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हम भारत की जलवायुओं के विषय में कह सकते हैं, जलवायु के विषय में नहीं, क्योंकि स्वयं विश्व में जलवायु की इतनी विषमताएं नहीं मिलती जितनी अकेले भारत में। मार्स डेन विद्वान भी ब्लैनफोर्ड विद्वान का समर्थन करते हुए कहते हैं कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। मासिक या दैनिक विभिन्नताएं, उपयुक्त कथन निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए काफी तर्कसंगत मालूम पड़ते हैं। राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के किसी दिन का तापमान 48 डिग्री से या 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जबकि उसी दिन कश्मीर में पहलगांव या गुलमर्ग का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, बल्कि गुलमर्ग के उत्तर में खिलन मर्ग पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम मिलता है। इस माह सारा उत्तरी मैदान गर्म हवाओं के थपेड़ों से सिकता रहता है तथा मौसम अत्यंत शुष्क रहता है, जबकि असम राज्य में इतनी वर्षा होने लगती है कि ब्रह्मपुत्र नदी भयंकर बाढ़ें लाने में सहायक होती है। पश्चिमी तट पर मुंबई के निकट तापमान सम अवस्था में रहता है। इस प्रकार एक ही माह में हमें देश के विभिन्न भागों में जलवायु की विभिन्नता के दर्शन होते हैं। यह विभिन्नता वार्षिक दृष्टि से भी अपना प्रभाव रखती दिखाई पड़ती है। दिसंबर की रात में ट्रांस एवं कारगिल जैसे स्थान न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने के कारण ठंड से कांप रहे होते हैं। जून माह में चेन्नई या तिरुवनंतपुरम में तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जून माह में राजस्थान के पश्चिमी भाग का अत्यधिक तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से या उससे अधिक तापमान से तप रहे होते हैं। इसी प्रकार का अंतर वर्षा के ढांचे में काफी स्पष्ट नजर आता है। चेरापूंजी में औसत वार्षिक वर्षा 1,080 सेंटीमीटर है, जबकि जैसलमेर में कुल वार्षिक वर्षा शायद ही 12 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। गारो की पहाड़ियों में प्राप्त एक दिन की वर्षा जैसलमेर की 10 वार्षिक वर्षा के बराबर हो सकती है। अप्रैल मई तथा अक्टूबर के महीनों में बंगाल के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय मैदानों में प्रचंड वर्षा वाले तूफान आते हैं, जबकि इससे करीब 1,000 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कारोमंडल तट शुष्क रहता है। नवंबर दिसंबर के महीनों में दक्षिण भारत लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि उत्तर भारत के यह महीने शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा प्राप्त करते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी माह में कश्मीर का किसान अपने फेरन में लिपटा हुआ तीक्ष्ण ठंड से कांप रहा होता है। उस समय केरल तट के मोपला सिर्फ एक लुंगी में खुले बदन में धान के खेतों में काम कर रहे होते हैं। जून में ब्रह्मपुत्र की घाटी बाढ़ के जल में डूब जाती है, लेकिन इसी समय बिहार एवं उत्तर प्रदेश का किसान अपने सूखे पड़े खेतों में बैठकर सूर्य की रोशनी से तपते मेघहीन आकाश को निहार रहा होता है। पश्चिमी तटीय मैदान में रहने वाले निवासियों को तापमान की विषमता एवं ऋतु की लय से कदापि परिचित नहीं होना पड़ता, जबकि दूसरी तरफ आगरा जैसे अंतस्थ स्थानों में मौसम का ऋतुवत वैषम्य वहां के जीवन में समस्त पहलुओं में होने वाले क्रियाकलापों के चक्र को प्रभावित करता है। यह ऋतुवत वैषम्य लोगों की जीवन पद्धति पर भारी प्रभाव डालता है। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में ग्रीष्म वर्षा की आरंभ एवं समाप्ति में भी अंतर पाया जाता है। गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर तथा पटना जैसे स्थानों में वर्षा जून के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाती है, जबकि इस समय आगरा, दिल्ली, पठानकोट, चंडीगढ़ में उत्सुकता से वर्षा की प्रतीक्षा हो रही होती है। भारतीय जलवायु में ये सब विभिन्नताएं उसकी स्थानीय परिस्थितियों के प्रभाव की परिचायक हैं। वे बाह्य परिस्थितियाँ जो भारत की जलवायु को एक रूप प्रदान करती हैं, इस प्रकार हैं। उत्तर की ओर हिमालय की हिमाच्छादित श्रेणियाँ भारत को उत्तरी ध्रुवीय ठंडी हवाओं के प्रभाव से मुक्त रखती है। इससे देश में महाद्वीपीय जलवायु की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ की जलवायु इन विशेषताओं, स्थानीय हवाओं की अधिकता, वार्षिक एवं दैनिक ताप परिसर का अधिक होना, वायु की शुष्कता, वर्षा का कम होना से युक्त मिलती हैं। दक्षिण की ओर हिंद महासागर की निकटता इसको उष्णकटिबंधीय व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में ले आती है। ये व्यापारिक हवाएं कर्क रेखा के उत्तर में भी अपना प्रभाव दिखलाने में सक्षम रहती है, क्योंकि हिमालय पर्वत शीतोष्णकटिबंधीय हवाओं को देश में प्रभाव दिखाने से रोक देता है। इस प्रकार देश का संपूर्ण भाग दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है, जो मौसम के अनुसार विपरीत दिशाओं में चलती हुई अपना प्रभाव डालती दिखाई देती हैं। इसी कारण भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का नाम दिया गया है। डॉक्टर स्टाम्प ने कहा है कि हम भारत को सदैव ही मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देश मानते हैं। यह सत्य भी है, क्योंकि उत्तर की विशाल पर्वत श्रेणियों से अवरोधित संपूर्ण क्षेत्र को एक ही इकाई मानना चाहिए, जिसमें एक ही प्रकार की उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। डॉक्टर आर एल सिंह का कहना है कि भारत की स्थिति व भू आकृतियों ने जलवायु संबंधी विशेषताओं को प्रभावित किया है। यद्यपि देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के बाहर उत्तर की ओर फैला है, जो कि उपोष्ण कटिबंध का भूभाग है, लेकिन फिर भी यह उष्ण मानसून जलवायु की विशेषताएं रखता है, क्योंकि हिमालय पर्वत एक प्रभावशाली मौसम अवरोधक के रूप में कार्य करता है। भारत की जलवायु पर उष्णकटिबंधीय हवाओं का प्रभाव ही वर्ष भर देखने में आता है। ये हवाएं मौसम के अनुसार अपनी दिशाओं में परिवर्तन कर लेती हैं, जो मौसम जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है। एच जी डोबी का कहना है कि मानसून दो परस्पर विरोधी मौसम रखने वाली जलवायु है, जहां विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं तथा शीतकाल में उत्तरी पूर्वी हवाएं चला करती हैं। हवाओं का यह उत्क्रमण ही मानसून जलवायु का मूल सिद्धांत है। आर एल सिंह के शब्दों में मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता मौसमों का आवर्तन है। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर भारतीय मौसम पर्यवेक्षण विभाग ने मानसून हवाओं के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वर्ष को निम्नांकित चार ऋतुओं में बांटा है। पहला, उत्तरी पूर्वी मानसून का समय, इसमें क है शीत ऋतु, यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक रहती है। इसमें ख है शुष्क ऋतु, यह 15 मार्च से 15 जून तक रहती है। दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून का समय, इसमें क है आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, यह 15 जून से 15 सितंबर तक रहती है। ख है शरद ऋतु, यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रहती है। पहला विस्तार से शीत ऋतु। शीत ऋतु सामान्यतः उत्तर भारत में मध्य नवंबर से प्रारंभ होती है तथा जनवरी एवं फरवरी इस ऋतु के सबसे ठंडे महीने होते हैं। केंड्रू के अनुसार स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम, निम्न तापक्रम एवं आर्द्रता, सर्वोत्तम दैनिक तापांतर तथा धीमी चलने वाली उत्तरी हवाएं इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस ऋतु की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा समझा जा सकता है। तापमान। उत्तर भारत के अधिकांश भाग में माध्य दैनिक तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है। हालांकि रात का तापमान काफी कम, कई बार कुछ स्थानों पर हिमांक से भी नीचे हो जाता है। ऐसा विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में होता है। उत्तर और दक्षिण भारत के तापमान में साधारण अंतर मिलता है। उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान बढ़ता जाता है। उत्तर भारत में तापमान 10 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि दक्षिण भारत में चेन्नई और कोचीन का जनवरी में तापमान क्रमशः 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तिरुवनंतपुरम में जनवरी में मध्य निम्न न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तटीय मैदानों के तापमान के वितरण ढांचे में ऋतुवत परिवर्तन नजर नहीं आता। भीतरी भागों में दैनिक ताप परिसर काफी अधिक मिलता है, विशेष रूप से राजस्थान राज्य में। इस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं। वायुदाब, इस समय भारत के उपमहाद्वीप पर उच्च वायुदाब का केंद्र पेशावर के आसपास 765 मिलीमीटर बन जाता है। दक्षिण के पठार पर अपेक्षतया वायुदाब उतना अधिक नहीं होता, किंतु विशाल मैदान में एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब की अपेक्षा भारत उपमहाद्वीप हल्का होता है। चक्रवात एवं वर्षा, शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात हैं। यह पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागर के निकट के प्रदेश में उत्पन्न होते हैं। यह पूर्व की ओर चलते हुए ईरान एवं पाकिस्तान पार करके शीत ऋतु में भारत पहुँचते हैं। इनको भारत की ओर अभिमुख करने में पश्चिमी जेट प्रवाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औसतन प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में 4 से 5 ऐसे गर्त भारत पहुंचते हैं तथा दिसंबर से फरवरी के मध्य सक्रिय होते हैं। इन्हीं के कारण उत्तर पश्चिम में अत्यधिक आवश्यक वर्षा तथा हिमालय में हिमपात होता है। इन चक्रवातों का प्रभाव 21 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश के उत्तर में तथा मध्य गंगा मैदान के पटना तक सीमित रहता है। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर इस वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी के इन 3 महीनों में औसत वर्षा की मात्रा 55 मिलीमीटर होती है, जबकि पंजाब से पश्चिमी बिहार तक के मैदान में इस मात्रा में 18 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक का अंतर होता है। शीत ऋतु की वर्षा की मात्रा हालांकि कम होती है, लेकिन रबी की फसल के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। M.S. रंधावा के अनुसार औसत रूप से दिसंबर से अप्रैल के मध्य प्रति माह 4 से 5 चक्रवात आते हैं। केंड्रयू ने इनकी संख्या अलग-अलग माह के अनुसार इस प्रकार बताई: नवंबर में 2, दिसंबर में 4, जनवरी में 5, फरवरी में 5, मार्च अप्रैल में 5 तथा मई में 2। दक्षिण भारत में लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तटीय प्रदेशों पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तमिलनाडु के दक्षिण तटीय प्रदेश में दिसंबर माह में 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। कारोमंडल तट के शांत खंड के प्रभाव में आ जाने से वर्षा अधिक होती है। कभी-कभी तूफानों द्वारा भयंकर वर्षा भी हो जाती है। शीत ऋतु उत्तर की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं से जब भी प्रभावित हो जाती है, तब भारत शीतलहर के प्रभाव में आ जाता है। तापमान 5 से 7 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। आकाश में घना कोहरा छा जाता है। समुद्र की ओर बढ़ने पर पाले का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु। यह उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च से जून के महीने में भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से गर्म व शुष्क मौसम की ऋतु होती है। कमजोर हवाएं व शुष्कता इस मौसम की प्रमुख विशेषता होती है। तापमान, फरवरी माह में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है। मार्च के अंत में वह कर्क रेखा की ओर बढ़ना आरंभ कर देती है। इस कारण सारे भारत में तापमान बढ़ने लगता है। मार्च के मध्य में तापमान बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। मार्च में सर्वाधिक तापमान दक्षिण भारत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जबकि अप्रैल में मध्य प्रदेश व गुजरात में तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मध्य मई तक उत्तर भारत का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कुछ स्थानों, विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत में, तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। जून माह में यह स्थिति तब तक जारी रहती है जब तक कि वर्षाकालीन हवाएं यहाँ तक न पहुँचें। जून माह में उत्तर भारत के मैदानी नगर भीषण गर्मी से झुलस जाते हैं और कई स्थानों का तापमान कभी-कभी 47 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक पहुँच जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में मई के अंत में तापमान गिरना शुरू हो जाता है। समुद्र के निकटवर्ती भाग तथा पहाड़ी भागों में तापमान अपेक्षतया कम पाए जाते हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर इस समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहते हैं। यहाँ दिन में तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचा नहीं हो बढ़ता। यहाँ दिन यद्यपि ठंडा रहता है, किंतु रातें उत्तर की ओर अपेक्षा गर्म रहती हैं। तापमान का उतार चढ़ाव कम रहता है। पहाड़ी भागों में 1893 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से तक तथा 1961 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिलांग का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इन दोनों स्थानों पर जुलाई वर्ष का सबसे गर्म माह होता है। अप्रैल माह से, जो दक्षिण भारत का सबसे गर्म माह होता है, बेंगलोर 916 मीटर की ऊंचाई पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखता है। आरंभिक वर्षा से पश्चिमी तटीय प्रदेश, कर्नाटक पठार, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में तापमान गिर जाते हैं। वायुदाब एवं हवाएं, सारा देश तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में कमी का अनुभव करने लगता है। ज्यों ज्यों तापमान बढ़ता है, त्यों त्यों तापमान निम्न वायुदाब का केंद्र सूर्य के साथ साथ पश्चिमोत्तर भाग में मरुस्थल होने से खिसकता जाता है। मरुस्थल के अतिरिक्त इस समय नागपुर के निकट क्षेत्रों में भी वायुदाब का केंद्र बन जाता है। मार्च से मई तक वायु की दिशा एवं मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस समय तक शीतकालीन मानसून हवाओं की दिशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। दिन के समय पछुआ हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। ये बहुत ही उष्ण व शुष्क होती हैं। इन हवाओं को स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। जब इन शुष्क गर्म हवाओं से आर्द्र हवाएं मिलती हैं, तो भीषण तूफान तथा आंधियां आती हैं। इनका वेग कभी-कभी 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इनसे वर्षा भी हो जाती है। बंगाल में इन्हें काल बैसाखी कहते हैं। वर्षा, इस ऋतु में संपूर्ण भारत में वर्षा न के बराबर होती है। इस समय वार्षिक वर्षा का केवल 1% भाग प्राप्त होता है। मार्च में उत्तर भारत में चक्रवातों से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। तापमान की अधिकता के प्रभाव के फलस्वरूप हवाओं की संवहन धाराएं चलने लगती हैं। पंजाब व हरियाणा में इन्हें धूल के तूफान, उत्तर प्रदेश में आंधियां और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। पश्चिमी जेट हवाओं का उनके संचालन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ऊपरी अधोमंडल के पश्चिमी विक्षोभों से इनका संबंध रहता है। कभी-कभी ये हवाएं स्थानीय तौर पर वर्षा करने में सहायक होती हैं। यह वर्षा कभी-कभी तेज घूमती हवाओं, गरज, विद्युत चमक, ओलों के साथ होती हैं और जनधन की भारी हानि कर देती हैं। नॉर्वेस्टर हवाओं की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार पर होती है। पछुआ हवाएं इन्हें पूर्व की ओर ले जाती हैं। इन हवाओं से असम में 50 सेंटीमीटर तथा उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। इस वर्षा को बसंत ऋतु की तूफानी वर्षा कहते हैं। असम में मई में इतनी वर्षा हो जाती है कि वह जून की वर्षा की 2/3 भाग होती है। यह चाय, जूट व चावल की फसल के लिए लाभकारी होती है। असम में इसे चाय वर्षा, टी सावर कहते हैं। गरजते हुए तूफानों से केरल, कर्नाटक के तटीय प्रदेशों में 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। दक्षिण भारत के भीतरी भागों में वर्षा 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है। दक्षिण भारत की इस वर्षा को आम्र वर्षा मैंगो सावर्स कहते हैं, जहाँ इससे कहवा की फसल को लाभ पहुँचता है, वहाँ इसे फूलों वाली बौछार चेरी ब्लॉसम सावर्स कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की गर्म व शुष्क हवाएं मानवीय परिस्थितियों को बहुत प्रभावित करती हैं। यह धरातल की नमी व पौधों को बुरी तरह से सुखा देती हैं। लोगों का दिन में बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लू के प्रभाव से अनेक मौतें हो जाती हैं। इस समय खेत बिल्कुल खाली रहते हैं। गन्ना, तंबाकू, हरा चना तथा सब्जियों का उत्पादन सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। मानसून आने के पहले यदि वर्षा काफी कम होती है तो सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। भयंकर सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है तथा फसलों के उत्पादन में देरी होने लगती है। तीसरा, वर्षा ऋतु। इस ऋतु को गर्म आर्द्र ऋतु भी कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ मौसम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। यह मानसून समस्त भारत में मध्य जून के मध्य सितंबर तक वर्षा करने में प्रभावकारी रहता है। जून माह में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो वायुमंडलीय परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगता है। तापमान, ज्यों ज्यों मानसून वर्षा बढ़ने लगती है त्यों त्यों तापमान भी कम होने लगता है। प्रायद्वीपीय भारत के तापमान जून माह में मई माह की अपेक्षा 3 डिग्री से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कम हो रहते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में जुलाई माह में 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी देखने को मिलती है। जून एवं जुलाई में पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर लगभग सभी भागों में तापमान में समानता रहती है। यदि लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो बीच बीच में तापमान बढ़ जाते हैं। अगस्त माह में तापमान और भी गिर जाते हैं। इस समय पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान कम हो जाता है, लेकिन यह कमी देश के अन्य भागों की अपेक्षा बहुत थोड़ी होती है। वर्षा की समाप्ति पर तापमान फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। थार के मरुस्थल में इस माह में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, जबकि मैदानी भागों में यह औसत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही रहता है। वायुदाब, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर लंबवत होते ही कम वायुदाब केंद्र और भी कम वायुदाब का हो जाता है। यह अति कम वायुदाब का केंद्र भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर विकसित हो जाता है। इसके फलस्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं इस वायुदाब के केंद्र तक आने का प्रयास करती हैं। जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण अपनी दिशा बदल देती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भारत की ओर बढ़ने लगती हैं। जिस प्रकार एक कम वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भाग में बन जाता है, उसी प्रकार का एक दूसरा कम वायुदाब का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के आसपास भी बन जाता है। यह कम वायुदाब के क्षेत्र एक स्थान पर स्थिर न रहने के कारण वर्षा के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। वर्षा ऋतु के समय वायुमंडल में आर्द्रता 100% होती है। दिन के समय तापमान के बढ़ने के कारण आर्द्रता का अनुपात घटता है, परंतु सायंकाल को तापमान के गिरने के साथ साथ आर्द्रता भी बढ़ती जाती है। प्रातःकाल वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र होता है। वर्षा, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो प्रधान शाखाएं हो जाती हैं। इनमें से एक अरब सागर और दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर से देश में प्रवेश करती है। दोनों शाखाएं अपने अपने तरीकों से देश में वर्षा के वितरण को प्रभावित करती हैं। चौथा, शरद ऋतु। यह ऋतु मध्य सितंबर से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत से लौटना शुरू कर देता है और उत्तरी पूर्वी हवाएं अपना स्थान लेने लगती हैं। दक्षिण प्रस्फोट के विपरीत यह प्रत्यावर्तन काफी क्रमिक होता है। इस प्रत्यावर्तन के ढांचे में भी रोचक प्रादेशिक अंतर देखा जाता है। तापमान, उत्तरी भाग से जब मानसून लौटना शुरू करता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद तापमान एकदम गिरने लगता है। अक्टूबर माह के अंत में यह गिराव अधिक तेजी से होने लगता है। अक्टूबर में औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नवंबर माह में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। इस समय औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। दिसंबर माह में देश के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भाग में औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तर भारत में किसी किसी रात तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाते हैं। वायुदाब। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र समाप्त होने लगता है और यह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इसके बढ़ने की गति का मानसून हवाएं अनुकरण करती हैं। मानसून हवाएं उतनी शीघ्रता से नहीं लौटती जितनी शीघ्रता से वे आती हैं। वर्षा धीरे धीरे समाप्त होती है और सितंबर के अंत तक उत्तरी मैदान की हवाएं शुष्क हवाओं में बदल जाती हैं। चक्रवातीय परिस्थितियों का स्थान प्रति चक्रवातीय परिस्थितियां ले लेती हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगता है। उत्तरी मैदान में मानसून लौटने का समय भिन्न भिन्न होता है। पंजाब से लगभग 15 सितंबर को, उत्तर प्रदेश से 1 अक्टूबर को, पश्चिम बंगाल से 15 अक्टूबर को मानसून लौटने लगता है। इसके साथ साथ हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। वर्षा। अक्टूबर तक वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर से प्रायः समाप्त हो जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में भी 15 अक्टूबर तक वर्षा समाप्त हो जाती है और इस सब क्षेत्रों में आकाश स्वच्छ एवं वर्षा रहित रहने लगता है। लौटता मानसून जब उत्तरी पूर्वी दिशा प्राप्त कर लेता है, तब बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करके बंगाल, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेशों तथा तमिलनाडु व केरल में वर्षा करता है। आंतरिक भागों में जीने जाने पर वर्षा कम होती जाती है। तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में 65 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। देश के अधिकांश उत्तरी भाग में थोड़ी सी वर्षा संवहनीय या चक्रवातीय परिस्थितियों के कारण हो जाती है। अक्टूबर में आने वाली तूफानी हवाओं पर ऊपरी अधोमंडल की पछुआ जेट हवाओं का प्रभाव पड़ता है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में भी इस समय उष्ण चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं जो तटीय क्षेत्रों पर भारी मूसलाधार वर्षा करने में सहायक होते हैं। इनके द्वारा कभी-कभी समुद्र में बड़ी-बड़ी ज्वार तरंगे आती हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में जनधन को काफी हानि पहुंचाती हैं। नवंबर दिसंबर में उत्तर भारत के मैदानी भागों में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों द्वारा हल्की वर्षा हो जाती है जो रबी की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। जलवायु प्रदेश। भारत की जलवायु में विभिन्नताएं उसकी विशालता के कारण मिलना स्वाभाविक है। समुद्र तल से ऊंचाई में विभिन्नता जलवायु की विविधता को जन्म देती है। तापमान व वर्षा का असमान वितरण की मात्रा भारत को जलवायु प्रदेश में बांटने का आधार प्रदान करते हैं। इनमें वर्षा की मात्रा की विभिन्नता प्रमुख रूप से विभाजन का आधार प्रस्तुत करती हैं। देश में जलवायु तत्वों की स्थानीय विभिन्नताओं व विशेषताओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया जा सकता है, जो कि प्रादेशिक विभिन्नताओं के रूप में परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, विशाल मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर जलवायु शुष्क से आर्द्र होती है, लेकिन यह परिवर्तन इतना क्रमिक व धीमा है जिसकी सीमाएं निश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटने के जितने भी प्रयास किए गए हैं, वे सब आपस में विभाजन के आधार में इतना अंतर नहीं रखते जितना कि जलवायु प्रदेश की सीमाओं व उनके विस्तार पर उनमें मतभेद नजर आते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उनको निम्नलिखित प्रकार से रखा जा सकता है। थॉर्नथ्वेट के अनुसार, इस अमेरिकी विद्वान ने 1933 में भारत के जलवायु विभाग के निम्न चार आधार प्रस्तुत किए हैं। वर्षा का मौसमी वितरण, तापमान का प्रभाव, वर्षा की सार्थकता, अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग। उसने जलवायु के तत्वों का सम्मिलित प्रभाव वनस्पति के रूप में आका। प्रकृति द्वारा उपस्थित एक पौधा ऋतु विज्ञान के यंत्र की भांति परिणामों को सूचित करता है। उसने मिट्टी, जल प्रवाह व वनस्पति का निरीक्षण किया तथा पौधों की बढ़ोत्तरी पर वर्षा के प्रभाव को आका। वर्षा की सार्थकता वर्षा प्राप्ति व वाष्पीकरण के बीच का अनुपात है। इसे ज्ञात करने के लिए कुल मास की वृष्टि को मास के वाष्पीकरण द्वारा विभाजित कर दिया जाता है। थार्नथ्वेट द्वारा प्रयुक्त किए गए अंग्रेजी अक्षरों को सूचक अक्षरों के रूप में रखा गया है। इनके अनुसार भारत में निम्न प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं। पहला ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए डैश, स्मॉल आर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा, सदाबहार वन, पश्चिमी तट एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। दूसरा कैपिटल बी, कैपिटल ए डैश, स्मॉल डब्लू। आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शीतकाल में वर्षा की कमी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं। तीसरा है कैपिटल बी, कैपिटल बी डैश, स्मॉल डब्लू। आर्द्र एवं गर्म जलवायु जिसमें शीत ऋतु में वर्षा कम होती है। असम, मेघालय, मिजोरम व नागालैंड पर इसका विस्तार है। चौथा कैपिटल सी, कैपिटल ए डैश, स्मॉल डब्लू। उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतकाल में वर्षा की कमी, घास के मैदान के उपयुक्त जलवायु, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग पर विस्तार है। पांचवा कैपिटल सी, कैपिटल बी डैश, स्मॉल डब्लू। उप आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु, शीतकाल में वर्षा की कमी, घास के मैदानों की अधिकता व गंगा के मैदान पर विस्तार है। छठा कैपिटल डी, कैपिटल ए डैश, स्मॉल डब्लू। उष्णकटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु, ग्रीष्मकाल में वर्षा की कमी, स्टेप्स की वनस्पति के लिए उपयुक्त है। गुजरात व राजस्थान के कुछ भागों पर विस्तार मिलता है। सातवां कैपिटल डी, कैपिटल बी डैश, स्मॉल डब्लू। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिमी पंजाब व हरियाणा पर विस्तार मिलता है। आठवां कैपिटल डी, कैपिटल बी डैश, स्मॉल डी। अर्ध शुष्क मरुस्थली व गर्म जलवायु, प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी, प्रायद्वीप के वृष्टि छाया प्रदेश पर विस्तार। नौवां कैपिटल डी डैश, शरद जलवायु, पूर्वी हिमालय, उत्तरांचल व पंजाब एवं हरियाणा पर विस्तार है। दसवां है कैपिटल ई डैश, शीत जलवायु, हिमालय के ऊंचे भागों व लद्दाख में मिलता है। ग्यारहवां कैपिटल ई, कैपिटल ए डैश, स्मॉल डी। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी, मरुस्थलीय वनस्पति ही उगती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग पर विस्तार है। यह विभाजन बड़ा जटिल है क्योंकि भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक की जलवायु भारत में मिलती हुई पाई जाती हैं। जी टी त्रिवार्था के अनुसार त्रिवार्था ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट में भारत के जलवायु प्रदेश पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उसने कोपेन की योजना में संशोधन किया है। उसका वर्गीकरण बड़ा सरल एवं बोधगम्य है। उसने भारत के चार प्रमुख विभाग किए हैं जो क्रमशः ए, बी, सी और एच हैं। इन्हें फिर सात उप विभागों में बांटा है। पहला है ए, इसके द्वारा उष्णकटिबंधीय जलवायु व्यक्त की जाती है। इसमें तापमान कभी भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता। इसके दो उप विभाग हैं। क है कैपिटल ए, स्मॉल एम। यह उष्णकटिबंधीय मानसून वन प्रदेश होते हैं जिनमें औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें पश्चिमी तटीय प्रदेश, त्रिपुरा व असम का कुछ दक्षिणी भाग सम्मिलित किया गया है। ख है कैपिटल ए स्मॉल डब्लू। यह उष्णकटिबंधीय मानसून सवाना प्रकार की जलवायु के बारे में बताता है। यह जलवायु तर व शुष्क दोनों विशेषता लिए होती है। औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तथा वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है, जिसका लगभग संपूर्ण भाग ग्रीष्मकाल में प्राप्त होता है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग रखा गया है। दूसरा कैपिटल बी। यह जलवायु उष्ण प्रकार की होती है, जिसमें वर्ष का काफ़ी समय शुष्क परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसमें तीन उपविभाग हैं। ग कैपिटल बी स्मॉल एस। यह उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु होती है, जिसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेशों पर मिलता है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी तमिलनाडु पर विस्तृत हैं। औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम रहता है। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। इनमें घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घ कैपिटल बी स्मॉल एस स्मॉल एच। यह उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है, जो गुजरात, मध्य पश्चिमी राजस्थान तथा दक्षिणी हरियाणा पर अपना प्रभाव रखती है। इनमें औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यह अर्ध शुष्क प्रदेश है, जिनमें घास के मैदान पाए जाते हैं। अंग कैपिटल बी स्मॉल डब्लू स्मॉल एच। यह जलवायु उष्ण व अर्ध उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग व कच्छ प्रदेश पर अपना विस्तार रखती है। तापमान प्रायः बहुत ऊंचे रहते हैं तथा वर्षा बहुत कम अर्थात 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वनस्पति के रूप में कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। तीसरा है कैपिटल सी। यह अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, जहाँ पर शीतकाल शुष्क व ठंडा है। इसका एक उपविभाग है। यह कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल डब्लू। गंगा के मैदान पर इस जलवायु का विस्तार मिलता है। इसके पश्चिमी भाग में वर्षा कम तथा पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी भाग में वर्षा शीतकाल में चक्रवातों द्वारा प्राप्त होती है। पूरे प्रदेश में वर्षा का अधिकांश ग्रीष्मकाल में प्राप्त होता है। शीतकाल में तापमान का औसत 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। चौथा है कैपिटल एच। यह अक्षर पर्वतीय जलवायु की ओर संकेत करता है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में यह जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर तापमान ऊंचा रहता है। शीतकाल में चक्रवाती वर्षा तथा ग्रीष्मकाल में मानसून वर्षा होती है। ऊंचे भागों पर शीतकाल में हिमपात होता है।